ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संक्रमणकालीन न्याय समेत विभिन्न विषयों में प्रधानमंत्री सहित प्रमुख तीन दलों के शीर्ष नेताओं के बीच हुआ विचार विमर्श। राजनीतिक नेतृत्व और जनप्रतिनिधियों में सुशासन की प्रतिबद्धता का होना जरूरी है, सभामुख घिमिरे का कथन। तन्हू की घिरिंग गांव पालिका की चिने नदी में हैंगिंग ब्रिज के बनने से 118 घर परिवार हुए लाभान्वित। और कंगो में ईंधन से लदी नाव में आग लगने से कम 140 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित प्रमुख तीन दलों के शीर्ष नेताओं के बीच मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था, संक्रमणकालीन न्याय समेत विभिन्न विषय में आज विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुए विचार विमर्श में उन्होंने संविधान का उल्लंघन करने और सामाजिक अराजकता सृजित कर देश की शांति भंग करने वालों को लेकर सचेत रहते हुए कदम बढ़ाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गणतंत्र पक्षधर शक्तियों को एक जगह खड़ा होना चाहिए। मौके पर संक्रमणकालीन न्याय से संबंधित दो आयोगों में पदाधिकारी चयन के लिए सिफारिश समिति द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में भी संज्ञान लिया गया। विचार विमर्श में प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड, संक्रमणकालीन न्याय संबंधी सलाहकार अग्नि खरे लगायत सहभागी थे। तन्हू की घिरिंग गांव पालिका के वार्ड नंबर 2 और 3 को जोड़ने वाली चिन्ने नदी में हैंगिंग ब्रिज के बन जाने से 118 घर परिवार लाभान्वित हुए हैं। पुल न होने के कारण घूमकर लंबी दूरी तय करने की बाध्यता से वहां के लोगों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही तन्हू की भानु नगर पालिका वार्ड नंबर 12 स्थित बीसी शेर बहादुर मोटर मार्ग के चंद्रावती घले छाप सड़क खंड की स्तोरणति का काम शुरू हुआ है। ये जानकारी वार्ड सदस्य सुदीप केशी ने दी। बागलुंग की 4 पालिकाओं में टीबी रोग मुक्त अभियान शुरू किया गया है। टीबी रोग पता लगाने, संक्रमण दर न्यूनीकरण करने और पहचान में आए टीबी मरीजों का इलाज करके 6 मुक्त पालिका निर्माण के लिए जिले की 10 पालिकाओं में से बागलुंग नगर पालिका, गलकुट नगर पालिका, बड़ीगार्ड गांव पालिका और काठे खोला गांव पालिका में अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। यह जानकारी जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुंग के क्षय रोग निरीक्षक देव प्रकाश घिमिरे ने दी। झापा के बीरतामोर वार्ड नंबर 2 चैतुबारी में स्थित रिद्धि सिद्धि प्लाईवुड उद्योग में आग लगने से करीब 1 करोड़ रुपए बराबर संपत्ति की नष्ट हुई है। बीती रात प्लाई सुखाने वाली ड्रायर मशीन गर्म हो जाने से लगी आग में 90 लाख रुपए बराबर की क्षति होने की जानकारी पुलिस ने दी। इलाका प्रहरी कार्यालय घैला डुब्बा की प्रहरी टोली, स्थानीय लोगों, कामगारों और बीरतामोर नगर पालिका के दमकल से सहयोग में 1 घंटे में ही आग को काबू पा लिया गया था। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम अंतर्गत आज और कल देश भर के करीब 22 लाख बच्चों को विटामिन ए कैप्सूल और पेट की कीड़े की दवा खिलाई जाएगी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अंतर्गत के स्वास्थ्य सेवा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विटामिन ए कैप्सूल 6 महीने से लेकर 5 साल से कम उम्र समूह के बच्चों को और कीड़े की दवा 1 साल से लेकर 5 साल उम्र तक के बच्चों को खिलाई जाएगी। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए देश भर करीब 52,000 महिला स्वयं सेविकाओं और 15,000 स्वास्थ्य कर्मियों को परिचालित किया गया है। सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश में सुशासन बहाल नहीं हो सका है। असल शासन संरक्षण मंच द्वारा आज काठमांडू में आयोजित राष्ट्रीय सुशासन शिखर सम्मेलन 2025 में सभामुख घिमिरे ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व और जनप्रतिनिधियों में सुशासन प्रत्याभूत करने की प्रतिबद्धता का होना जरूरी है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि देश में लोकतंत्र और गणतंत्र का विकल्प नहीं है। नेपाल प्रेस यूनियन कास्की द्वारा आज पोखरा में आयोजित प्रेस मीट में गृहमंत्री लेखक ने कहा कि देश में भले ही विभिन्न तत्व सुगबुगा रहे हो, लेकिन लोकतंत्र और गणतंत्र का विकल्प नहीं है। ये बताते हुए कि मां के नाम से भी नागरिकता दिए जा सकने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, उन्होंने कहा कि कानूनी झंझटों के कारण अब तक ये व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने कहा कि देश में गंदे पानी में मछली पकड़ने जैसा दुष्प्रयास किया जा रहा है और इसको सफल नहीं होने देंगे। नेवा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा द्वारा आज काठमांडू के वसंतपुर में आयोजित खबरदारी सभा में उन्होंने कहा कि प्रतिगामी षड्यंत्र और दुस्साहस को परास्त किया जाएगा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि पर्यटन उद्योग में महिला उद्यमशीलता ही अर्थतंत्र का महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। आज नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिला पर्यटन क्षेत्र के विकास में नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह करने में सक्षम है। पर्यटन मंत्री ने आगामी वर्ष के बजट में पर्यटन क्षेत्र के विकास और समृद्धि को केंद्र में रखकर रकम विनियोजन किए जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। काठमांडू महानगरपालिका ने शैक्षिक गुणस्तर के लिए सामुदायिक विद्यालय को प्रविधि मैत्री बनाना शुरू कर दिया है। कामपा के गौरव योजना अंतर्गत गरी खाने शिक्षा महानगर को इच्छा कार्यक्रम अंतर्गत सूचना प्रविधि मैत्री विद्यालय डिजिटल शिक्षण सिकाई कार्यक्रम के लिए चालू और क्रमागत करके करीब ₹20 करोड़ विनियोजित किया गया है। ये जानकारी काठमांडू महानगरपालिका के निमित्त शिक्षा अधिकारी केशव ग्यवाली ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मोटर के चलने वाली एक लकड़ी की नाव में आग लग गई। इस घटना के बाद नाव कांगो नदी में पलट गई, जिसमें कम से कम 140 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को बताया गया कि नाव महिलाओं और बच्चों सहित 500 यात्रियों को ले जा रही थी, जब मंगलवार को देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कांगो नदी में यह नाव पलट गई। बता दें कि कांगो में नौका दुर्घटनाएं आम बात है। कांगो में पुराने लकड़ी के जहाज गांवों के बीच परिवहन का मुख्य साधन है और अक्सर उनमें क्षमता से अधिक सामान भरा होता है। वह वजह से कांगो में नाव दुर्घटनाएं काफी ज्यादातर होती रहती है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों का अनुमान है कि सैकड़ों लोग अभी भी लापता है। पहले मृतकों की संख्या 50 बताई गई थी। एचबी कंगोलो नामक नाव में मबंडा का शहर के पास आग लग गई। यह नाव मटनकुमु बंदरगाह से बोलुम्बा क्षेत्र के लिए रवाना हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 100 बच्चे लोगों को स्थानीय टाउन हॉल में अस्थायी आश्रम ले जाया गया है, जबकि जलने से घायल लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संक्रमणकालीन न्याय समेत विभिन्न विषयों में प्रधानमंत्री सहित प्रमुख तीन दलों के शीर्ष नेताओं के बीच हुआ विचार विमर्श। राजनीतिक नेतृत्व और जनप्रतिनिधियों में सुशासन की प्रतिबद्धता का होना जरूरी है, सभामुख घिमिरे का कथन। तन्हू की घिरिंग गांव पालिका की चिन्ने नदी में हैंगिंग ब्रिज के बनने से 118 घर परिवार हुए लाभान्वित। और कंगो में ईंधन से लदी नाव में आग लगने से कम 140 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।